शांति। नुमा शाम के समय हमारे बीच में चैतन्य दर्शनीय मूरत आदरणीय राजयोगिनी डॉक्टर निर्मला देवी जी विराजमान हैं। हम रूहानियत की इत्र छिड़कते हुए एक हाथ हिलाते हुए दीदी का स्वागत करते हैं, सत्कार करते हैं, अभिनंदन करते हैं। दीदी मुंबई महानगरी से निकले ईश्वर के अनमोल रत्न हैं। 1962 में जब आपने अपनी MBBS की पढ़ाई पूरी की, तभी आपको मुंबई में ही रहते बाबा का ज्ञान मिला और सबसे पहले मुलाकात तो मम्मा से ही हुई है। तो आज हमारे को मम्मा के अनुभव सुनाएंगे और फिर दीदी को जैसे ही बाबा का ज्ञान मिला और जैसे ही दीदी निश्चय बुद्धि बने, तन मन धन सब कुछ बाबा को समर्पित कर दिया। 1966 में बाबा की राय से सेवा केंद्र भी खोला और क्लिनिक भी खोली। और वो जो सेवा केंद्र खोला, वो पिता से, लौकिक पिता से दहेज में आपको मिला था। तो धन अपना समर्पित किया, तन सेवा में लगाया और फिर 66 के बाद जब 1971 में बाबा ने आपको विदेश सेवा के लिए चुना, तो फिर मेडिकल प्रैक्टिस भी छोड़ दी और फिर पूरा ही बाबा की सेवा अर्थ 71 से 78 तक विदेश की धरनी पर आप भ्रमण करते रहे और बाबा की सेवाएं करते रहे। यूनाइटेड किंगडम, लंदन, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, मॉरिशस आदि आदि स्थानों पर भ्रमण करते रहे और बाबा की सेवाएं करते रहे, जिसके फलस्वरूप कई सेवा केंद्र खुले और बाबा के बच्चे निकले। और उसके बाद 78 में आपने ऑस्ट्रेलिया सिडनी को अपना बेस बनाया और वहाँ पर परमानेंटली रहकर 78 से लेके 2008 तक खूब सेवाएं की ऑस्ट्रल एशिया पैसिफिक रीजन की, जिसके अंतर्गत करीब 16, 17 या 18 देश आते हैं, जहाँ सभी देशों में बाबा के सेवा केंद्र हैं, बाबा के बच्चे हैं। तो हम कहेंगे वर्तमान में दीदी ऑस्ट्रल एशिया पैसिफिक रीजन के डायरेक्टर हैं, रीजनल कोऑर्डिनेटर हैं। और फिर 2009 में तो बाबा ने आपको ज्ञानसरोवर एकेडमी का भी कार्यभार संभाला, तो आप वहाँ के भी डायरेक्टर हैं। और वर्तमान में तो बाबा ने आपके कंधों पर और एक जिम्मेवारी रखी है, आप यज्ञ के जॉइंट एडमिनिस्ट्रेटिव हेड भी हैं। तो दिन ब दिन कंधों पर जितनी ही जिम्मेवारियाँ बढ़ती जाती हैं, दीदी उतना ही न्यारी भी रहती है, उतनी ही हल्की भी रहती है और उतनी ही बहुत शांत चित्त भी रहती है। अल्पभाषी हैं, लेकिन अल्प भाषा में, कम शब्दों में भी बाबा के बड़े बड़े रहस्य भरी बातें प्रैक्टिकल में मैं कैसे करनी है अपने अनुभव से सुनाती हैं। तो आज हम सुनेंगे मम्मा ने साकार, बाबा मम्मा साकार में थे, दीदी ने उनकी पालना ली है, तो मम्मा के संग के अनुभव दीदी से सुनेंगे। आदरणीय दीदी जी।
ओम शांति। जून मास में मम्मा की विशेष याद आती है। मातेश्वरी जगदम्बा सरस्वती जिनका मुख्य नाम है, वैसे अलग अलग प्रांतों में अलग अलग नाम से पूजा होती है। गुजरात में अंबा जी का मंदिर है, गुजरात में विशेष नवरात्रि में देवियों की पूजा होती है। 9 दिन गरबा आदि का प्रयोजन होता है। बहुत उमंग से लोग नाचते गाते हैं। बंगाल में, कलकत्ता में विशेष नवरात्रि में दुर्गा पूजा के स्टोर कई स्थानों पर लगे रहते हैं और कई लोग कहाँ कहाँ से दर्शन करने वहाँ पहुँच जाते हैं। अपनी मुन्नी बहन भी एक दो बारी कलकत्ता में दुर्गा पूजा निमित्त पहुँच गई थी। तो मम्मा की नव दुर्गा के रूप में पूजा होती है। लक्ष्मी कमलासनधारी सतयुग की गायन उसका है। काली जिसने असुरों का विनाश किया, देवियों को 8 हाथ दिखाते हैं, उसमें अलग अलग अस्त्र शस्त्र दिखाते हैं। वास्तव में उनके पास ज्ञान के अस्त्र शस्त्र है, हिंसा नहीं करती। माँ कभी किसी बच्चों की हिंसा नहीं करेंगी, पर उसके अवगुणों को निकाल देंगे। दुर्गा के रूप में दुर्गुणों को निकालने वाली, अम्बा के रूप में सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करने वाली, सरस्वती विद्या की देवी, हमेशा उनके हाथ में सितार दिखाते हैं। और मम्मा सितार बजाकर शुरू शुरू में ओम की ध्वनि बहुत अच्छी करती थी। वैष्णव देवी का पूजन होता है, उमा देवी, गायत्री, संतोषी माँ, क्योंकि आजकल संतोषी माँ की भी काफी पूजा होती है। शुक्रवार को लोग व्रत रखते हैं, सबको संतुष्ट करने वाली। तो मम्मा कुमारी थी, 14 वर्ष के ज्ञान में आई। उनके आने के पहले उसकी माँ और दो मौसी और शांतामणि दादी, जो उनकी मौसी की बेटी थी, प्रकाशमणि दादी भी उनके पहले ज्ञान में आई थी। परंतु मम्मा की विशेषता देख बाबा ने उसको यज्ञ माता का टाइटल दिया और मम्मा ने वो पार्ट बहुत अच्छी रीत से बजाया। कुमारी होते हुए भी माँ का पार्ट बजाया, उसकी लौकिक माँ भी उसको मम्मा कहती, ब्रह्मा बाबा भी मम्मा कहता था, कभी बच्ची कहता था। तो मम्मा शुरू से ममतामय थी और चाहे छोटा बच्चा चाहे बड़े चाहे माताएं चाहे भाई मम्मा के गोद में जाते थे और माँ का स्नेह अनुभव करते थे। मम्मा कभी अमृत वेला मिस नहीं करती थी। 2:30 बजे उठना, 5 बजे तक योग करना, और जो भी माताएं बहनें या भाई जो मम्मा को बताते थे कि ये विघ्न है समस्या है, मम्मा उनको सकास देती थी सवेरे उठकर। एक बारी वो मुंबई में थी, रात को 12 बजे तक कोई मिनिस्टर को मिलना हुआ और अपना 2:30 बजे नियम अनुसार मम्मा उठ गई। रमेश भाई वहाँ रहते थे, उन्होंने कहा मम्मा आप सोई तो इतना देरी से और 2:30 बजे उठ गई। मम्मा कहे यदि मिनिस्टर को मिलने के लिए मैं लेट तक जाग सकती हूँ तो 2:30 बजे तो मेरी पीयू के साथ अपॉइंटमेंट होती है, मैं कैसे मिस करूंगी। और मम्मा बाबा को बहुत रिस्पेक्ट देती थी। हाँ जी, जो भी बाबा कहते थे हाँ जी करके दिखाती थी। यज्ञ की शुरू में बाबा सबको साक्षात्कार कराते थे, कई बहनों को। एक रात्रि लक्ष्मी नारायण के शादी का साक्षात्कार कराया और ब्रह्मा बाबा को फिर डायरेक्शन दिया कि सवेरे 9 बजे ये ड्रामा करना हो, क्योंकि जो संदेशी तो एक ध्यान में जाते थी तो सबको मालूम पड़े उसके लिए फिर ड्रामा करते थे। तो बाबा ने रात को 9 बजे फिर मम्मा को बुलाया कि कल सवेरे तक हमको लक्ष्मी और नारायण का वस्त्र और अलंकार बना के दो। मम्मा ने कहा हाँ जी। तो 4-5 बहनों को कपड़े सिलाई करके बिठाया और थोड़ी बहनों को अलंकार बनाने बिठाया और खुद भी सारी रात जागी। 9 बजे तैयार करके दिया। दूसरी बारी यहां पांडव भवन से एक ग्रुप जा रहा था और उन दिनों में हम लोग यहाँ से बैक रास्ते से बस स्टॉप तक चल के जाते थे और हमारा सामान बैलगाड़ी में जाता था। तो तो ग्रुप जा रहा था और बाबा को एकदम विचार आया इनको गरम गरम हलवा खिलाएं। फौरन मम्मा को बुलाया कि गरम गरम हलवा इनके लिए तैयार कराओ। मम्मा किचन में गई, 10 मिनट में हलवा तो तैयार हो जाता है, तो 10 मिनट में लाके ब्रह्मा बाबा को दिया। ब्रह्मा बाबा ने साइकिल पर भाई को भेजा, जब तक ये लोग पहुंचे और सामान अपना बस पर चढ़ाए उसके पहले गरम हलवा मिल गया। उस समय सामने मनोहर दादी भी खड़ी थी, वो सोचती थी कि ये लोग जा रहे हैं और ब्रह्मा बाबा हलवा तैयार करने कहते हैं, पर मम्मा ने कोई प्रश्न नहीं किया, मम्मा ने फौरन तैयार करके दिया। और मम्मा मुरली की प्यासी थी, योग और मुरली सारा दिन उसी में ही मस्त रहती थी। तो जब पांडव भवन में बाबा मुरली सुनाता था, मम्मा वहां होती थी, बाबा एक तरफ गद्दी पर बैठता था, बहनों की तरफ मम्मा भाइयों की तरफ बैठती थी, और सारा समय ऐसे देखकर मुरली सुनती थी। सुना, मनन मंथन किया, धारण किया, फिर क्लास कराते थे। तो उनके क्लास भी बहुत ब्राह्मणों को आकर्षित करते थे। सब ब्राह्मण जरूर अटेंड करते थे, और मम्मा टूर भी ज्यादा करती थी। बाबा जहां भी छोटे छोटे सेंटर होते थे, जरूरत होती थी, मम्मा को भेज देते थे। तो बेंगलोर में दादी हृदय पुष्पा थी, टिकन दादी कहते थे उसको, चंद्रमणि दादी की बड़ी बहन, वहां की भाषा तो दादी को नहीं आती, दादी तो हिंदी जानती है, सिंधी जानती है, तो थोड़ी तकलीफ तो हुई बेंगलोर में। तो शुरू शुरू में तो छोटा सेंटर था, बाबा ने मम्मा को भेजा, जाओ मदद करो। टिकम दादी को खुशी भी हुई, तो थोड़ा सोचना पड़ता था कि ये छोटे सेंटर में मम्मा को रखेंगे कहाँ और मम्मा का प्रवचन कहाँ रखेंगे, परंतु उसको भी बाबा के ऊपर पूरा विश्वास था। तो एक दिन निकल पड़ी बाजार में, कहा कि चलो कोई सेठ से बात करें। तो दुकान में गई एक सेठ के पीछे पीछे, तो सेठ जी को कहा, आप सरस्वती देवी को जानते हो? कहा, हाँ मैं तो उसका भगत हूँ। कहा, वो यहाँ बेंगलोर में आ रही है, उसके लिए रहने का स्थान चाहिए और प्रवचन के लिए हॉल चाहिए। तो उसने कहा, सेठ ने, चलो मेरे साथ कार में बैठ जाओ, मैं दिखाता हूँ, मेरी अभी अभी धर्मशाला नई नई बनी है, हॉल भी है। तो नई नई धर्मशाला में मम्मा को रहने के लिए अच्छे कमरा भी दिया और सीधा भी भेज दिया, दाल चावल गेहूं और घी आदि आदि सब भेज दिया। और हॉल भी दे दिया और दादी ने पर्चे छपाए, प्रिंटिंग कराए और पब्लिसिटी की। तो हफ्ता भर मम्मा रही और वो सेठ को भी मम्मा से अपनी इष्ट देवी का साक्षात्कार हुआ, वो भी खुश हो गया कि यहाँ हमारे स्थान पर सरस्वती देवी आई है। तो मम्मा की योग शक्ति ऐसी थी जो कईयों को इष्ट देवी का साक्षात्कार होता था। अब अमृतसर में शुरू में बहुत ओपोजिशन हुई क्योंकि कई कुमारियां, माताएं और एक भाई भी मांधेला था, तो बाबा ने मम्मा को भेजा और उन्होंने एक दिन फाइनल किया, सब 100 का झुंड सवेरे 7 बजे के पहले आए सेंटर का गेट खटखटाया कि हमको आने दो, मम्मा को मिलना है। और बाबा को मालूम था कि कुछ गड़बड़ होने वाली है, तो जगदीश भाई को भी भेज दिया था। तो जगदीश भाई गया नीचे गेट पर और कहा कि अभी हमारा मुरली का टाइम है, आप बाद में मिलना मम्मा को। कहा नहीं, अब भी मिलना है। तो मम्मा ऊपर बैठी थी, उसने जरा हल्ला सुना तो कहा आने दो बच्चों को। माँ की ममता है ना, कहा चलो क्यों नीचे हल्ला करते हैं। तो जगदीश भाई ने कहा अच्छा आप में से 7 जने चलो हमारे साथ ऊपर, मम्मा से मिलकर जो बोल रहा है बोलो। तो 7 जने ऊपर गए, मम्मा योग में बैठी थी एकदम, वो लोग भी सामने जाकर बैठ गए शांति से। 5-7 मिनट तक कुछ नहीं बोले। मम्मा ने कहा आइए बच्चे, क्यों आना हुआ। कहा नहीं नहीं मम्मा सब कुछ ठीक है। ऐसे करके उतर गए। तो नीचे वाले कहे आपको तो जादू लग गया ब्रह्मा कुमारी का। पर कहा नहीं, इनके मम्मा तो देवी है साक्षात, ब्रह्मा कुमारियां क्या भी है, क्या विज्ञान देती है। तो मेरा भाग्य था कि जब मैं बंबई में ज्ञान में आई, उन दिनों में सेंटर छोटा था, मतलब वाटरलू मेंशन था, हॉल बड़ा था, 40-50 बैठ सकते थे, परंतु एक ही कमरा था। और पुष्प शांता दादी, निर्मल शांता दादी और किचन संभालने वाली 3 बहनें ऑलरेडी रहती थी, एक ही बेडरूम था। तो मम्मा को रमेश भाई का नेपियंसी रोड पर जो घर है उसमें रखा गया। तो मम्मा को रोज सवेरे रमेश भाई ड्राइव करके लाता था और मम्मा क्लास कराती थी। एक सवेरे ही क्लास होता था क्योंकि वहाँ लोग दूर दूर से आते थे, माताएं ज़्यादातर तो ज्ञान में तो माताएं होती है, कोई सायन से, कोई मुलुन से, कोई थाना से, कोई कामदेवली मलाड से, ऐसे दूर दूर से हम लोग जाते थे। तो क्या हुआ कि हर संडे मम्मा का पब्लिक लेक्चर रहता था। तो उषा रमेश जब ज्ञान में आए तो उषा मेरी यूनिवर्सिटी में क्लास में साथ में पढ़ते थे, तो उसको निश्चय हुआ और मम्मा वहाँ थी तो मुझे निमंत्रण दिया कि मम्मा का प्रवचन सुनने आओ। तो मैं एक संडे गई, उस समय मैं हॉस्पिटल में काम करती थी, सिर्फ शाम को 2 घंटा छुट्टी मिलती थी और संडे को कभी कभी ऑन ड्यूटी रहती थी तो शाम को ही 2 घंटा मिलती थी छुट्टी, और कभी ऑन ड्यूटी नहीं होती थी तो मैं घर जाती थी। तो सेंटर था वहाँ म्यूजियम या वाटरलू में, हमारी हॉस्पिटल भाईकला में थी और हमारा लौकिक घर कांदीवली काफी दूर था, इसलिए सिर्फ संडे संडे घर जाती थी। तो उस संडे वहां गई मम्मा का प्रवचन सुनने, हम कुछ 4-5 जने जल्दी पहुंचे थे तो निर्मल शांता दादी बैठकर हमको ज्ञान सुनाना शुरू किया, फिर मम्मा ने प्रवचन किया। तो प्रवचन के बाद फिर उषा ने कहा तुम कोर्स करो, मैंने कहा ठीक है। दूसरे दिन से कोर्स शुरू किया, 7 दिन के बाद कोर्स पूरा हुआ तो उषा ने हमें मम्मा से इंट्रोड्यूस कराया कि ये मेरी सखी है, डॉक्टर है, अभी कोर्स पूरा किया। तो मम्मा ने कहा कैसे हैं, ठीक है, कुछ प्रश्न है? पहले मैंने कहा मम्मा मेरी टीचर जा रही है वापस। तो उन दिनों में जब मम्मा बाबा बम्बई आते थे तो कोई न कोई सीनियर दादी को बुलाते थे, आओ बम्बई भी देख के जाओ और मम्मा बाबा से रिफ्रेश भी होके जाओ। तो कुंज दादी आई थी पटना से, उसने मुझे कोर्स कराया और उसको वापस जाना था। मम्मा कहे कोई बात नहीं, निर्मल शांता तुम्हारी पालना करेंगे। फिर 3-4 मास के बाद उषा ने हमें मम्मा के साथ भोजन के लिए निमंत्रण दिया। उस समय तक मुझे इतना पूरा विश्वास नहीं था, शिव बाबा भगवान है ठीक है, पर ब्रह्मा के तन में आकर ये पढ़ाते हैं इसका विश्वास नहीं था। दूसरा 5,000 वर्ष का कल्प और हूबहू रिपीट होता है, वो भी विश्वास नहीं था। फिर बाद में जब हमने यज्ञ की स्टोरी सुनी फिर हमारा विश्वास पक्का हो गया। पर उस दिन भोजन पर मैंने मम्मा को कहा, अभी तो पूरा विश्वास में था, मम्मा मैं नहीं चाहती हूँ मेडिकल प्रैक्टिस करूँ, मेरा विचार है बाबा की सेवा में लग जाऊं। मम्मा ने कहा जब तुम ब्रह्मा बाबा से मिलो ना तब पूछना। तो ऐसे बड़े बड़े निर्णय मम्मा खुद नहीं करते थे। तो मम्मा को उन दिनों में 9 मास बम्बई रहना पड़ा। कारण ये हुआ, वैसे तो क्या होता था दिसंबर जनवरी में मधुबन में बहुत ठंडी होती थी, कोई नहीं आता था। 18 जनवरी 69 पहली बारी मधुबन में 700 लोग आए, तो हम लोग बुलाते थे मम्मा बाबा को, दिल्ली में आओ, मुंबई में आओ, चेकिंग भी कराओ अपनी हेल्थ की और रिफ्रेश भी करो। तो उन दिनों में बाबा को लक्ष्मी नारायण का चित्र बनाना था, आर्टिस्ट था पर आर्टिस्ट साक्षात्कार नहीं करता, उसको लक्ष्मी नारायण का कुछ पता ही नहीं। और हमारे पास संदेशी थी, शील दादी ध्यान में जाती थी पर आर्टिस्ट नहीं थी। तो मम्मा और शील दादी ने बैठकर ये पहला लक्ष्मी नारायण का चित्र बनवाया वहां बम्बई में। तो डायरेक्शन देते रहे, ब्लाउज कैसा हो, साड़ी कैसी हो, कितने अलंकार हो, गले में कितने माला हो, बाजूबंद कैसा हो, आदि आदि। तो मम्मा दिव्य दृष्टि नहीं थी उनको, पर दिव्य बुद्धि थी, तो वो भी डायरेक्शन देती थी। तो 9 मास के बाद फिर मम्मा वापस गई और 64 में कानपुर में मम्मा थी और मालूम पड़ा कि ब्रेस्ट में ट्यूमर है। तो डॉक्टरों को शक हुआ कि शायद कैंसर हो सकता है, तो कहा कि मुंबई में ले जाओ उनको, चेकिंग कराओ। तो 64 मई में मम्मा मुंबई आई और कैंसर निकला। उस समय इतनी एडवांस ट्रीटमेंट नहीं थे, तो मम्मा को रेडियोथेरेपी दिया। तो बीच बीच में रेडियोथेरेपी होती थी और मम्मा जब ठीक होती थी सवेरे क्लास कराती रहती थी, बीच बीच में पूना भी जाती रहती थी कि पूना का उन दिनों में सिर्फ 4 घंटे का सफर होता था कार में, अभी तो 3 घंटा हो गया है मुंबई से, पर उन दिनों में 4 घंटा था। तो बीच बीच में पूना भी जाती थी। तो मम्मा सर्विस करती रही अंत तक। फिर जून के शुरू में डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, क्योंकि मम्मा का कैंसर फैल गया था, फेफड़े में आसपास पानी भर गया था, सांस लेने की तकलीफ थी। तो डॉक्टरों ने कहा उनको जहां अंत में शरीर छोड़ना है भले ले जा सकते हैं, क्योंकि हम अभी कुछ कर नहीं सकते हैं। तो 4 जून को मम्मा मुंबई से मधुमन आए और जाने के पहले वो सुन कम सुन टोली भी दी सबको जो उस समय आ सके। तो जब वो सामने से आते थे मम्मा ठीक दृष्टि देती थी, जब वो यहां से वापस जाते थे तो मम्मा गहरा सांस लेती थी ताकि किसी को मालूम ना पड़े, क्योंकि उसको मालूम था कि बच्चों को मालूम पड़ेगा कि मुझे तकलीफ है तो बच्चों को दुख होगा। और ब्रह्मा बाबा ने भी किसी भी दादियों को नहीं बताया, जो बम्बई में थे उनको मालूम था, बाकी किसी दादियों को बताया नहीं कि मम्मा अब लास्ट स्टेज में है। तो मम्मा 4 जून को आ गई यहाँ और 24 जून को गुरुवार था, ब्रह्मा बाबा भोग के दिन अमृत पिलाते थे और मम्मा सबको भोग देती थी। तो क्या हुआ कि उन दिनों में 12 बजे भोग लगता था, तो बाबा ने अमृत पिलाया, मम्मा ने भोग दिया। उन दिनों में यहाँ अंगूर हुई थी, वो भी भोग में थी, तो सभी ने मम्मा से भोग स्वीकार किया। और करीब 4 बजे मम्मा ने शरीर छोड़ा। उसी दिन सवेरे सावित्री दादी और दादा राम, जो लखनऊ के निमित्त बने थे, वो यहाँ से सवेरे गए, पर उनको मालूम नहीं था कि मम्मा इतने सीरियस है। वहाँ पहुँचे और मालूम पड़ा कि मम्मा ने तो शरीर त्याग किया। वहाँ से फिर दूसरी ट्रेन में वे वापस आ गए। और कुछ दिनों के बाद मनोहर दादी भी आई, रोती रोती ब्रह्मा बाबा के पास, बाबा मम्मा ने शरीर छोड़ा। बाबा कहे, तुम परचान करने आई हो क्या? तो सिंधी में कहते हैं, जो मरने के बाद कुछ सांत्वना देने आते हैं ना, परचानी कहते हैं। तो जब मम्मा ने शरीर छोड़ा, ब्रह्मा बाबा ने एक दो बारे संदेश को भेजा कि बाबा को कहो, अभी बच्चों को माँ की दरकार है, वापस भेजो। तो श्री बाबा कहे, ये शरीर बहुत जर्जरीभूत हो गया है, बीमार है, अभी उससे काम नहीं चलेगा, इसलिए दूसरा नया शरीर लेके पाठ बजाएंगे। फिर कभी कभी बाबा कहते थे, बूढ़े की बीबी ना मरे, बच्चों की माँ ना मरे, जानकी दादी को कहा, क्योंकि उनको डबल बोझा आ गया, माँ बाप दोनों का पार्ट बजाना पड़ा। भल करके दीदी ने जिम्मेवारी ले ली मम्मा की, परंतु फिर भी लोगों को मम्मा की तो कमी रही। तो मम्मा जो क्लास कराती थी, बहुत अच्छा एग्जाम्पल देके कराती थी। जैसे एक पॉइंट मम्मा ने दी कि यदि किसी की तबीयत ठीक नहीं है, उल्टी का ख्याल आता है, क्या करेगा? घर में है तो फौरन बाथरूम में दौड़ेगा और वहाँ वॉश बेसिन में या फ्लश में, टॉयलेट में करके फ्लश कर देगा। घर के बीच में करेगा तो सफाई करनी पड़ेगी। रास्ते में होंगी तो क्या करेंगे? आप साइड पर जाकर उल्टी करेंगे, रास्ते के बीच में नहीं करेंगे। नहीं तो रास्ते पर चलने वाले, उनका मन भी खराब हो जाएगा, फिर उस पर मक्खी बैठेंगी, वो मक्खी फिर किसी के खाने पर बैठेंगी, उसको भी बीमार करेंगे। इसी रीत से आपको किसी की कोई बात अच्छी नहीं लगती, आपको क्या करना चाहिए? इधर उधर बात नहीं करो, क्योंकि नहीं तो हम क्या करेंगे, जो भी रास्ते में मिला छोटे बड़े सबको कहेंगे ये ऐसा ऐसे ये किया वो किया ऐसे हुआ वैसे हुआ, तो क्या होगा, उसका भी तो मन खराब हो जाएगा ना, वो भी बीमार हो जाएगा। इसलिए जब बीमार होते हैं तो डॉक्टर के पास जाते हैं, इसी रीत से वो आपको यदि उल्टी करनी है ना तो सीनियर बहनों के पास जाओ, मम्मा बाबा के पास जाओ, ताकि आपको सॉल्यूशन मिले, उसको भी गाइडेंस मिले सीनियर से। दूसरी पॉइंट याद है मुझे, मम्मा कहती थी उन दिनों में तो क्या है कि जो घर का कचरा निकलता था ना 60s में, तो क्या करते थे, आंगन वगैरह साफ करके दरवाजे के बाहर फेंक देते। अब पड़ोसी वो कचरा अंदर तो नहीं लाएगा, इसी रीत से हरेक अपनी कमी कमजोरी निकालना चाहता है। यदि आप देखेंगे उस कमी कमजोरी को तो क्या होगा, आपके अंदर आ जाएंगी। तो इसलिए किसी की कमी कमजोरी न देखनी है, न सोचनी है, न चर्चा करनी है। तो इसी रीत से मम्मा के क्लास बहुत प्रभावित करते थे लोगों को, और डेढ़ घंटे का क्लास एक पॉइंट पर, उस पॉइंट को क्लियर करती थी मम्मा, जिससे हम दूसरों को ये बातें समझा सके। बाबा की मूर्ति तो आप जानते हो कैसी होती है, हर प्रकार की, ज्ञान की पॉइंट, योग की पॉइंट, धारणा की पॉइंट, सेवा की पॉइंट, इधर से उधर उधर से उधर, सब पॉइंट्स देते रहते हैं, पर मम्मा की एक पॉइंट पर। तो इसलिए मम्मा की क्लासेस अच्छी भी लगती थी, और मम्मा इतनी स्वीट थी, जो शुरू में किसी को भी कंप्लेन होती थी मम्मा के पास जाते थे, मम्मा भी क्या करती थी उसको सुनती थी, फिर दूसरी व्यक्ति जिसके बारे में कंप्लेन होती थी उसको बुलाती थी और पूछती थी तुमने ऐसे किया, ऐसे ना करके ऐसे करती थी तो प्यार से समझाती थी, तो लोगों को इतना फील नहीं होता था, और पर्सनली समझाती थी। और ब्रह्मा बाबा क्या करते थे, क्लास में धड़ाधड़ मुरली चलाते थे। एक बारी क्लास में दो बहनें थी जिसका आपस में फैमिलियारिटी थी, तो बाबा ने नाम नहीं लेते, बहनों की बहनों के साथ फैमिलियारिटी होती है, सब समझ जाते थे कि इसके लिए आज बाबा ने मुरली चलाई है, तो इसलिए थोड़ा बाबा से डरते थे। पर मम्मा से ज्यादातर डरते नहीं थे, पर आज ही हमने एक भाई का अनुभव सुना कि जानकी दादी ने किसी को कहा कि मुझे मम्मा से थोड़ा डर लगता है। मम्मा को मालूम पड़ा, मम्मा ने बुलाया जानकी दादी को, तुम मेरे से डरती हो क्या? तुमने कोई पाप झूठ किया है जो डरती है? जो सच्चा है वो क्यों डरेगा? और फिर मम्मा, क्योंकि दादी थी तो पेशेंट्स को देखती थी, तो मम्मा बीच बीच में दादी को बुलाकर पेशेंट का हालचाल पूछती थी, कुछ ज्ञान की चर्चा करती थी, फिर तो दादी का डर निकल गया मम्मा से। तो ऐसे मम्मा जो ज्ञान की देवी थी, असुर संहारिणी थी, उनको देखने से कईयों को देवी का साक्षात्कार होता था। और कितना भी ऑपोजिशन के लिए आते थे, मम्मा के सामने आते ही शांत हो जाते थे। और मम्मा भी हमेशा निडर रही। आपको कोर्ट केस का मालूम होगा कि बाबा ने मम्मा को यज्ञ की हेड बनाई, तो जब कोर्ट केस हुआ, एनटीओ मंडली ने केस किया, मम्मा को बुलाया गया। और जब प्रॉमिस लेते हैं तो गीता हाथ में उठानी होती है और बोलना होता है कि परमात्मा को हाजिर नाजर समझ मैं जो भी बोलूंगी सच बोलूंगी, पूरा सच बोलूंगी, सच के सिवाय कुछ नहीं बोलूंगी। तो मम्मा कहे, मैं तो परमात्मा को हाजिर नाजिर नहीं समझती हूं, मैं कैसे ऐसा प्रॉमिस लूंगी, गीता उठाऊंगी, मैं ये बोलूंगी, मैं सच बोलूंगी, सच के सिवाय और कुछ नहीं बोलूंगी, पूरा सत्य बोलूंगी। तो जज के साथ कुछ टाइम डिबेट हुई, आखिर जज को मानना पड़ा। कहा ठीक है, आप जैसा प्रॉमिस लेना चाहो लो। और कई बातों में सामना करना पड़ा। जब बच्चे थे तो पिकेटिंग करनी पड़ी, तो मम्मा भी शक्ति सेना की सेनानी बनकर उसने आगे रहकर बड़ों बड़ों का सामना किया। क्योंकि उस समय के जो मुखी थे ये तो ये सब एंटी हो गए कि ये दादा तो पवित्र रहने की प्रतिज्ञा कराते हैं, तो ना तो ब्रह्मा बाबा हिला। ब्रह्मा बाबा कहता है मैं क्या करूं, वो ऊपर वाला ये कहता है कि ब्रह्मचर्य का पालन करो, मैं थोड़ी कहता हूं। और और ब्रह्मा बाबा के सामने भी पत्रकार आए, कहा, और गवर्नमेंट के ऑफिसर आए, तो उस समय ब्रह्मा बाबा भी क्या करते थे, पहले खुद नहीं मिलता था, पहले दादियां जाकर जरा उनको ज्ञान देकर हल्का करते थे। तो ब्रह्मा बाबा को कहा कि आपने ये क्यों कहा कि ये इंडिया और पाकिस्तान जमीन के टुकड़े के लिए क्यों लड़ रहे हैं, जमीन का टुकड़ा दो दो। कहा ये आपने क्यों कहा? कहा मैंने थोड़ी कहा, ये तो ऊपर वाले ने कहा। तो कहा ऊपर वाले को बोल देना, ऐसा नहीं बोले। तो यज्ञ में सामना तो बहुत करना पड़ा, बेगरी पाट आई, खाने पीने का कुछ नहीं था, सिर्फ बाजर का डोडा और छाछ। ब्रह्मा बाबा ने भी यही खाया जो सभी ने खाया, मम्मा ने भी वही खाया। तो क्या है कि बाबा मम्मा आगे रहकर एग्जाम्पल बने। कभी कभी अनाज साफ करने भी बैठ जाती थी मम्मा, कहते थे मम्मा आप अनाज सफाई करने के लिए बैठी, कहाँ उसमें क्या है, ये शरीर द्वारा सेवा तो करनी है ना। तो मम्मा बाबा भी एग्जाम्पल बने, सब कुछ हाथ से करके दिखाया। तो इसलिए आज मम्मा की इतनी महिमा और पूजा होती है जितनी ब्रह्मा की नहीं है। ब्रह्मा के एक दो मंदिर मुश्किल है, अम्बा का तो अनेक मंदिर और नौ नौ दिन नवरात्रि में पूजा होती है। तो इसलिए हमें भी शिव शक्ति बन निर्भयता से बाबा का संदेश सबको देना है, क्योंकि बाबा ने अपने आप को हमारे सामने प्रत्यक्ष किया। अभी हमारी ड्यूटी है बाबा को विश्व के सामने प्रत्यक्ष करना। तो जितना हम अपनी स्थिति ऐसी बनाकर औरों को साक्षात्कार कराएंगे तो नेचुरली है बाबा का, शिव बाबा का और मम्मा का उनको हमारे द्वारा साक्षात्कार होगा। ओम शांति। अभी आधा घंटा बाबा की याद में बैठेंगे।